یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ فرینڈز، کیا زندگی اتنی سستی ہے؟ کیا یہی زندگی کا لکش ہے کہ جیسے تیسے گزر جائے، یا زندگی کا لکش کچھ اور ہے؟ آپ بھی سویکار کریں گے کہ ہماری زندگی کا لکش ہے صدا خوش رہنا۔ آپ دن بھر میں جو بھی کاریہ کرتے ہیں صدا خوش رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ سوچئے، لیکن کیا صدا خوش رہ سکتے ہیں؟ یا کبھی نیچے کبھی اوپر، تھوڑا کبھی غم کبھی خوشی، تو کیا کریں جو ہم صدا خوش رہ سکے اور سہج روپ سے رہ سکے، نیچرل روپ سے رہ سکے؟ تو آئیے آج ہم یہی خوشی کا خزانہ، اسٹاک آف ہیپینیس، شیئر بھی کرتے ہیں اور انکریز بھی کرتے ہیں۔ فرینڈز، ہر چیز جب کچھ کی جاتی ہے تو کسی لکش کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا سمندر ہے اور اس میں ایک ناؤ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ کہا نہیں جائے، بیچ سمندر میں ناؤ اور اس کے چلانے والے ناوک کو اتار دیا جائے اور کہ بس ابھی آپ جائیے، اور اس کو کوئی بھی ڈائریکٹ منزل کا راستہ نہیں بتاتے ہیں، منزل کا پتہ نہیں بتاتے ہیں، کیول اس کو بول دیتے ہیں آپ جائیے، تو آپ سوچئے وہ ناو کہاں جائے گی؟ نیچرل ہے کہ جہاں لہرے اسے لے جائے گی، ہوا کے تھپیڑے اسے لے جائیں گے، وہ ناو وہیں جائے گی۔ تو اس جیون میں بھی اگر ہمارے جیون کا کوئی لکش نہیں ہے، ہماری کوئی منزل فکس نہیں ہے، تو ہمارے جیون کا کیا حالت ہوگا؟ جیسے میرے اس دوست نے کہا کہ جیسے سمے، جیسی پرستھتیاں، جیسا سنگ، اس کا پربھاؤ پڑے گا، ہم اسی طرف چلے جائیں گے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ پر جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچا کہ میرے جیون کا لکش کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، سادھن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سادھیہ کیا ہے، راستے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، منزل کیا ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے خوشی چاہیے اور ہر سمے خوش رہنا، یہ میرے زندگی کا لکش ہے۔ کیوں ہم ہر سمے خوش رہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھلے یہ لکش نردھارت نہیں کیا ہو، لیکن آپ بھی ہر سمے خوش ہی رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں ہم ہر سمے خوش رہنا چاہتے ہیں؟ آپ دن بھر میں 5-7 بار، 10 بار پانی پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، 3-4 بار بھوجن ناشتہ بھی کرتے ہیں، سارا دن ہم سانس لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ آپ کہیں گے یہ تو ضروری ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بنا ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے کا جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شریر 5 تتووں کا بنا ہوا ہے۔ 5 تتووں کا شریر میں اگر کسی تتو کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، اور اس تتو کی سپلائی ہمیں اسی سمے دینی پڑتی ہے۔ جیسے پانی کی کمی ہوئی، ہمیں پیاس لگے گی، ہمارا گلا، ہمارے ہونٹ سوکھنے لگیں گے اور ہم پانی پیئیں گے۔ کہتے ہیں شریر 70% سے زیادہ شریر میں پانی ہے، لکوڈ ہے، تو پانی کی کمی ہوگی اور ہم پانی لیں گے۔ اسی پرکار سے پرتھوی تتو کی کمی ہوگی، ہم بھوجن لیں گے، ہم हवा लेंगे। तो जैसे पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और हमें हर समय उसकी जरूरत होती है और हम लेते रहते हैं तभी हम जीवित रह पाते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना है जिसको हम आत्मा रूह सोल कहते हैं वो हम हैं, वो भी सात गुणों से बने हुए हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति। आप देखेंगे आप दिन भर में कुछ भी करते हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, परिवार में हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इन सात गुणों में से किसी न किसी एक गुण की भी कमी को पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं। प्रेम की कमी हो जाती है तो हम नए नए दोस्त बनाते हैं, आनंद की कमी हो जाती है पिक्चर देखने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, शांति की कमी हो जाती है विश्राम करते हैं, थोड़ा एकांत में चले जाते हैं। तो ये हमारे अपने ये सात गुणों से हम बने हुए आत्मा हम चेतना है, तो हमें ये चाहिए और इसीलिए हमें हर पल खुशी चाहिए। फ्रेंड्स, इस महामारी के समय हमने देखा वही व्यक्ति थोड़ा आराम से रह पा रहे हैं जिनके पास स्टॉक है, चाहे वो कैश, चाहे वो बैंक बैलेंस, चाहे वो अनाज का स्टॉक, दालों का स्टॉक, चाहे वो साधन सामग्री का स्टॉक, चाहे वो फैमिली में आपस में अच्छे रिलेशन सद्भावना उसका स्टॉक। लेकिन अगर हमने खुशी का स्टॉक जमा नहीं किया तो क्या होगा? जो छोटी मोटी कुछ परिस्थिति आएगी हमारा चेहरा उतर जाएगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए खुशी का स्टॉक जमा करना भी जरूरी है। यही हमारे जिंदगी का लक्ष्य है कि हम सदा खुश रहें। अब हम सदा खुश कैसे रह सकते हैं? खुशी एक होती है बाहरी चीजों पर आधारित खुशी, जैसे आपकी किसी ने महिमा कर दी आप खुश हो गए, लेकिन ये खुशी डिपेंडेंट है। इसी प्रकार से आपको कोई चीज वस्तु मिल गई जो आप चाहते थे आप खुश हो गए, आपको इस गर्मी में एयर कंडीशन में बैठने को मिल रहा है आप खुश हैं, आपके अच्छे मित्र संबंधी बने हैं आप खुश हैं, ये खुशी दे रहे हैं आपको, इनसे भी खुशी मिल रही है। लेकिन याद रखिए कि ये चीजें जब इनका अभाव हो जाएगा, मित्र संबंधी अगर आपकी थोड़ी भी आलोचना कर देंगे, एयर कंडीशन किसी कारण से बंद हो जाएगा, कोई चीज जो आपको मिली है वो कहीं गुम हो जाएगी, तो आपकी खुशी भी क्या होगी? उसके साथ साथ वो भी गुम हो जाएगी। तो अगर हमारी खुशी इन विनाशी साधनों पर, विनाशी व्यक्तियों पर, विनाशी वस्तुओं पर टिकी हुई है तो हमारी खुशी भी टेम्परेरी होगी, परमानेंट खुशी नहीं होगी। अगर हमको परमानेंट खुशी चाहिए तो उसका सोर्स भी परमानेंट चाहिए। यह शरीर और इससे जुड़ी हुई सभी चीजें वो परमानेंट नहीं है, बदलती रहती है और निरंतर बदलती रहती है। परमानेंट क्या है? परमानेंट हमारा मन जो सदा ही हमारे साथ होता है। तो अगर हमने हमारे मन को पॉजिटिव बना दिया तो हमें परमानेंट खुशी मिलती रहेगी, और हमारा मन नेगेटिविटी में जा रहा है तो हमारी खुशी गायब होने के पूरे पूरे चांस है। तो हमें अगर सदा खुश रहना है तो हमारे मन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी लोग अपने अपने प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, और अभी का जो समय चल रहा है उस समय में तो वैल्यूज की डेफिनेशन ही बदल गई है। जैसे जब मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस में था, अभी भी हूं प्रैक्टिस में, लेकिन अभी तो अधिकतर समय यहां आबू में ही सेवा में होता हूं, तो जब वहां था तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें एक न्यूज सुनाई एक दिन। हमें कहा कि ललित भाई एक बहुत अच्छा समाचार है, डिपार्टमेंट में बहुत ईमानदार ऑफिसर आया है। मैंने कहा ये तो सचमुच अच्छा समाचार है जो डिपार्टमेंट में ईमानदार ऑफिसर आए हैं, अच्छा है, चलो पैसा तो नहीं लेंगे। वो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कमाल है, आप कह रहे हैं कि ईमानदार ऑफिसर आए हैं और मैं कह रहा हूं पैसा नहीं लेंगे, तो आप बोल रहे ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं पैसा लेके काम कर देते हैं। अब आप देखिए ईमानदारी की डेफिनेशन क्या हो गई है, जो पैसा रिश्वत लेके काम कर दे वो ईमानदार है। इस कलयुग में इतना हद तक सारा ही वातावरण बदल गया है, और ऐसे समय में जब चारों तरफ नेगेटिव है, जहां वैल्यूज की डेफिनेशन तक नेगेटिव हो गई है, वहां अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, पॉजिटिव एंगल से सोचना, पॉजिटिव जीवन जीना जिससे कि हमको खुशी मिलती रहे, ये सचमुच एक चैलेंज है, लेकिन हम कर सकते हैं, प्रयास की जरूरत होती है। हम पॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिविटी कहते क्या किसको है, बहुत सरल भाषा में। आप सभी फ्रेंड्स मैथमेटिक्स तो सभी ने पढ़ी है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आता है, प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब यहां दो प्लस और दो माइनस का क्या मतलब है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? प्लस माना पॉजिटिव, तो दो प्लस कौन से हुए, जो हमें करना चाहिए और जो हम करते हैं, और दो माइनस कौन से हुए, जो हमें नहीं करना चाहिए हम नहीं करते हैं। तो अब इसका इक्वेशन सेट करके देखिए, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, जो हमें करना चाहिए वो हम करते हैं तो वो प्लस पॉजिटिविटी हो गई, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं वो भी पॉजिटिविटी हो गई। लेकिन नेक्स्ट है माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, जो हमें नहीं करना चाहिए वो अगर हम करते हैं तो ये नेगेटिविटी हो गई, और लास्ट प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं वो भी नेगेटिविटी हो गई। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। आप अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर एक नजर डालिए और इस इक्वेशन में उसको फिट कीजिए, तो आपको आइडिया आएगा कि ये मेरा संकल्प, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे वर्ड्स और मेरे डीड्स, मेरे व्यवहार, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपको खुशी देगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको खुशी नहीं देगा, वो आपको गम देगा, निराशा देगा। तो क्या नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि मन ही वो सूक्ष्म चीज है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन सबसे पावरफुल है। गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तू मन मेरे में लगा, तू मन मेरे में लगा। अर्जुन कहता है कि प्रभु, आप कह रहे हो कि मन मेरे में लगा, लेकिन मन तो चंचल घोड़े की तरह है, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, वो तो कंट्रोल में ही नहीं है, उसको आप में कैसे लगाऊं मैं? तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देते हैं। गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक है, अशंशय महाबाहो मनो दुर्निभम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब है कि निसंदेह हे महाबली, यह मन चंचल घोड़े की तरह है, लेकिन निरंतर अभ्यास से और बेहद के वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। तो आज यहां हम देखेंगे कि क्या निरंतर अभ्यास हम करें जो हम अपने मन को पॉजिटिव बना लेवे, जिससे हम हर परिस्थिति में खुश रह सके, हमारे चेहरे पर सदा खुशी रह सके। आप जानते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या टीवी में, कहीं पर भी जब किसी घड़ी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उस घड़ी में कितना बजा हुआ होता है, याद कीजिए। जब भी वो घड़ी की एडवर्टाइजमेंट छपी हुई होगी उसमें कितना बजा होगा, याद आ रहा है? नहीं तो आप अभी देख लेना कहीं भी, उसमें सदा ही 10:10 होता है। क्यों 10:10 होता है? क्योंकि वो घड़ी का स्माइलिंग फेस है। इसी प्रकार से हमारा चेहरे पर ही सदा स्माइलिंग रहे, सदा खुश रहें, चाहे क्लाइंट का, डिपार्टमेंट का, फैमिली का, फ्रेंड्स का कितना भी प्रेशर हो, लेकिन उस प्रेशर को भी हम पॉजिटिविटी से हैंडल करते हुए सदा खुश रह सके, लाइट रह सके, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब आप कार लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों ओर, जैसे इस शहर से बाहर जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर आपको बबूल के पेड़ दिखाई देते हैं, पूरा जंगल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि इन जंगलों को, इन कांटों को उगाने की मेहनत किसने की होगी? किसने लाके ये बीज डाले होंगे, किसने उनको रोज पानी दिया होगा, किसने उन पे रोज फर्टिलाइजर डाला होगा, किसने उनको जानवरों से, खाने से बचाया होगा, किसने मेहनत करके उन जंगलों को बढ़ाया? आप कहेंगे किसी ने नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जंगल उग गए सब। और वास्तव में यही होता है कि प्रायः जंगल और ये कांटों के जंगल ये ऑटोमेटिक ही उग जाते हैं, इन्हें उगाने की, संभालने की, परवरिश करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में 10 फीट बाई 10 फीट का बगीचा बनाते हैं, या 10-12 गमले में फूलों के पौधे लगाते हैं, तो उसमें कुछ मेहनत करती पड़ती है या वो भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक बार नर्सरी से पौधे लाके गमले में डाल दिया, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा ना। आप कहेंगे नहीं, रोज पानी भी देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा, और गाय से बकरी से संभालना भी पड़ेगा कि कहीं आके खा नहीं जाए। और ये भी एक दो दिन नहीं, सदा काल, जब तक वो बगीचा हमें बनाए रखना है तब तक ये प्रयास हमको करना ही है। फ्रेंड्स, हमारा भी मन इसी प्रकार की धरती है, एक धरातल है। हमारे मन रूपी धरातल पर नेगेटिविटी के कांटे ऑटोमेटिक उग ही जाते हैं, उन्हें कोई बीज डलवाने की जरूरत नहीं है, कोई खाद पानी देने की जरूरत नहीं है, ये कांटे उगते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसी मन रूपी धरातल पर पॉजिटिविटी का बगीचा बनाना हो, दिव्य गुणों के फूल उगाने हो, ईमानदारी, प्रेम, हार्मनी, रिस्पेक्ट देना, नम्रता, खुशियां बांटना, सहयोग करना, स्वागत करना, आदर करना, इन सर्व दिव्य गुणों के फूल अगर हमारे इस मन रूपी धरती पर उगाने हो तो वो ऑटोमेटिक नहीं उगते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और वो भी निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाके ये फूल ये हमारा इस धरातल पर उग जाता है, फिर वो फूल सुगंध देते हैं। और आप देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे, जिनका स्वभाव गुस्से वाला होता है, नेगेटिव होता है, चिड़चिड़ापन वाला होता है, उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन जिनका स्वभाव मीठा होता है, मधुर होता है, सॉफ्ट होता है, उसके पास सब जाना पसंद करते हैं। कांटों के जंगल में कोई जाना पसंद नहीं करता है, फूलों के बगीचे में हर कोई जाना पसंद करता है। ऑफिस में भी अगर किसी सीनियर का स्वभाव ऐसा होता है तो स्टाफ में से एक दूसरे को कहेंगे, जा साहब को फाइल लेके आ जा, जा साहब से पेपर लेके आ जा, खुद जाना पसंद नहीं करेंगे उनके पास। और जिनका बॉस का स्वभाव बहुत अच्छा होता है तो न सिर्फ जाना पसंद करते हैं बल्कि कारण ढूंढते हैं कि थोड़ी देर उनके साथ बैठें, थोड़ा अगर वो कुछ हमको बतावे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, वो हमको इम्पावर्ड करेंगे तो उनके पास जाना पसंद करेंगे और खुशी मिलेगी, खुशी बढ़ेगी। तो ये कांटों का जंगल, नेगेटिविटी, ये वर्तमान समय की ओर से गिफ्ट मिला हुआ है जो चारों तरफ यही फैला हुआ है, लेकिन हमें इसे बदलना है। और आपको मैं बताऊं कि ये इसको बदलना बहुत जरूरी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, अभी ये लॉकडाउन के पीरियड को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले जितने भी सुसाइड्स के केस आते हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग होता है, आप देखेंगे काफी यंग और पढ़े लिखे ऐसे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुसाइड कर रहे होते हैं। क्या कारण है? क्योंकि मन में नेगेटिविटी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। आपने डिप्रेशन नामक बीमारी का नाम सुना होगा जो आजकल बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। मुझे भी पता था लेकिन ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता था। बहुत वर्षों पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, तब मैं अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर बैठा हुआ था दोपहर में, तो एक भाई आया, तो मैंने उसको बिठाया, उसका नाम पूछा, बताया मेरा नाम चिंतन है। फिर मैंने कहा कैसे आना हुआ, तो कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। मैंने कहा मेडिटेशन क्यों सीखना है आपको, क्या चाहिए आपको मेडिटेशन से? तो उसने कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप मेडिटेशन सीखो, इसलिए मैं खास सीखने आया हूं। तो मैंने कहा आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? तो उसने जो स्टोरी बताई वो मेरे लिए एक नई और आंख खोलने वाली थी। उसने कहा कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं और रोज मैं गोलियां लेता हूं, तो डॉक्टर ने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। तो मुझे थोड़ी जानने की उत्सुकता हुई कि इसको डिप्रेशन हुआ कैसे, क्योंकि मैंने नाम तो सुना था लेकिन उसकी प्रोसेस का मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको हुई कैसे? तो उसने बताया कि वो एक ज्वेलरी के शोरूम में जॉब करता था और उसका ड्यूटी था कि वो ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग सिटी में ज्वेलरी सप्लाई करने जाने का, सूटकेस में ज्वेलरी भर के उसे सप्लाई करने जाने का। तो इसी सिलसिले में वो एक बार सूटकेस में ज्वेलरी लेके गांधीधाम जा रहा था, तो रात को जो स्लीपर कोच बस होती है उसमें टिकट बुक की हुई थी और वो गांधीधाम जा रहा था। तो वो जब सोया बस में, सूटकेस ऊपर रखी हुई थी, तो उसको विचार आया कि इस सूटकेस में 15 लाख रुपए का माल भरा है और अब ये तो स्लीपर कोच है, मुझे नींद आ गई और रास्ते में किसी ने अगर ये सूटकेस चुरा ली तो मेरे पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा। अगर मैं सेठ को कहूंगा कि ये किसी ने चोरी कर ली तो सेठ मानेगा ही नहीं, वो तो यही कहेगा कि नहीं तुम्हीं ने कुछ किया होगा, और 15 लाख रुपया मैं कैसे सेठ को चुकाऊंगा? मेरी सैलरी तो मात्र 20,000 रुपया है, घर का खर्च भी चलाना है, मेरी वाइफ भी जॉब नहीं करती है, अभी तो 2 साल की बच्ची है और वो तो आज बुखार में थी जब मैं उसको छोड़ के आया, तो मैं 20 लाख रुपया कैसे, 15 लाख रुपया कैसे चुकाऊंगा? ये तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे फ्रेंड्स मुझे चोर समझेंगे, मेरे परिवार वाले, मेरे इन लॉज मुझे चोर समझेंगे, मेरा समाज मुझे चोर समझेगा, ये तो मेरी जिंदगी पूरी कलंकित हो जाएगी। बस ऐसे विचार उसको आने लगे। हुआ कुछ भी नहीं, सूटकेस वहीं पड़ी है, लेकिन वो विचारों का चक्र उसके मन में चलने लगा। दूसरे दिन जिस शोरूम में उसको सप्लाई करने जाने था, तो जब 11 बजे तक वो वहां नहीं पहुंचा तो वो गांधीधाम के व्यापारी ने अहमदाबाद में उस व्यापारी को फोन किया कि भाई क्या हुआ, आपका सेल्समैन आने वाला था माल लेके, अभी तक पहुंचा नहीं। तो अहमदाबाद वाले व्यापारी ने कहा वो तो निकल चुका कल रात को बस से। तो कहा तो अभी तक तो हमारे पास नहीं आया है। तो उसने कहा कि फलानी होटल में वो रुकता है, तो आप जरा प्लीज उस होटल में जाके इंक्वायरी कीजिए कि वो वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो वो गांधीधाम वाला व्यापारी होटल में गया और जाके होटल के उस रिसेप्शन पे पूछा कि भाई अहमदाबाद से कोई चिंतन नाम का लड़का आया है सवेरे? तो उन्होंने रजिस्टर देखा, बोले हाँ आया है और इस कमरे में रुका हुआ है। तो वो ऊपर गया, उसको नॉक किया, तो दरवाजे पर नॉक किया, कोई खोले नहीं। फिर वो रिसेप्शन पे बताया कि भाई वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। तो उन्होंने काफी प्रयास किया, दरवाजा नहीं खोला, फिर चाबी लेके डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो देखा तो वो अंदर बेड पर बेहोश पड़ा था, सूटकेस पास में ही पड़ी थी। तो तुरंत वो लोग उसको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर्स को बताया और डॉक्टर ने थोड़ा ट्रीटमेंट किया, उसको होश आया। तो वो व्यापारी ने पूछा कि क्या हुआ, रास्ते में किसी ने कोई जहर के बिस्किट खिला दिए आपको या ऐसा कुछ हुआ क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर ये कैसे तुम बेहोश हो गए? कि पता नहीं कमजोरी एकदम लग रही थी और बस मुझे आगे का कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो सूटकेस वहीं थी और वो काम उसका हो गया। लेकिन तब से उसे डिप्रेशन की बीमारी आ गई। देखिए नेगेटिव वातावरण में जो नेगेटिव विचार चले उसके, उन नेगेटिव विचारों से ही उसको बीमारी आ गई। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लगी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, केवल विचार करने से उसको डिप्रेशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मन कितना शक्तिशाली है। अगर वो नेगेटिविटी के कारण इतनी बड़ी बीमारी दे सकता है तो पॉजिटिविटी के कारण वो आपको सदा खुशी भी दे सकता है। बस तो आप तैयार हो जाइए कि अपने मन को पॉजिटिव बनाना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बगीचा बनाना है तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं भी छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं, लेकिन चूंकि मेरा गुस्से का स्वभाव था तो भले मैं पढ़ने में होशियार था लेकिन मैं छोटे भाई बहनों को नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि जब वो कोई गलती करते थे तो मुझे गुस्सा आ जाता था, हाथ उठ जाता था, इसके कारण मैं उनको नहीं पढ़ा सका। लेकिन फिर मैंने जब ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया तो उसके बाद वैल्यू समझी कि हमारे मन को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है, और कॉन्शियसली एफर्ट्स किए उसके लिए, और आज मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक वो गुस्सा अब नहीं है। तो इसके लिए क्या एफर्ट्स करते हैं? तो जो मैंने एफर्ट्स खुद किए हैं और अभी भी मैं रेगुलर कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो एफर्ट्स मैं क्या कर रहा हूं। मैं डेली 3 प्रैक्टिस करता हूं। वो 3 प्रैक्टिस अगर आप भी करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप खुद महसूस करेंगे कि हां, मन पॉजिटिव होता जा रहा है, लाइफ पॉजिटिव होती जा रही है, शब्द पॉजिटिव होते जा रहे हैं आपके। क्या प्रैक्टिस करती है? मैं प्रतिदिन कम से कम 101 बार लोगों को गुड विशेस देता हूं, चाहे बोलकर, चाहे मन में, चाहे लिखकर उनको गुड विशेस देता हूं। आप कहेंगे ये क्या होता है? गुड विशेस एक पॉजिटिव मन से निकली हुई शक्तिशाली तरंगे होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, जो जिसके लिए भी हम करते हैं उस तक तुरंत पहुंचते हैं और उसे पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। गुड विशेस एक बहुत अच्छी गिफ्ट है जो आप किसी को भी दे सकते हो, और ऐसा नहीं कि व्यक्ति को, आप गुड विशेस व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, किसी आने वाली घटना को, सबके लिए आप गुड विशेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप अपने खुद के लिए कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, इसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी वायरस कहो या कुछ भी कहो इस शरीर को टच भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये गुड विशेस अपने लिए, परिवार के लिए, हमारे परिवार वाले सभी बहुत अच्छे हैं, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सब आनंद में है, सब निरोगी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और भी जिनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई है और सब आनंद से जीवन जी रहे हैं, ये उनके लिए गुड विशेस करें। वस्तु के लिए, आपकी कार है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका मकान है, ऑफिस है, आप बिजनेस है, उसके लिए आप गुड विशेस कीजिए कि बहुत अच्छे साधन है, मुझे बहुत सुख दे रहे हैं, उनका भी लाइफ बहुत लंबा होगा, वो बहुत अच्छे चलेंगे और सबको सुख देंगे। वस्तु के लिए गुड विशेस करें। घटना के लिए, कुछ प्रोग्राम आने वाला है, कुछ घर में शुभ प्रसंग आने वाला है, कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसके लिए गुड विशेस करें कि बहुत अच्छा होगा, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो सब बहुत खुश होंगे, सब प्रसन्न होकर जाएंगे, ऐसी ऐसी गुड विशेस करें। आप कहेंगे कि ये बच्चों का खेल है, इसके करने की जरूरत है कुछ? ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जापान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर मातुसो सुमारो, उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने पानी के ऊपर यह प्रयोग किया कि पानी को अच्छे वाइब्रेशन दिए और उसके फोटो लिए, बहुत हाई क्वालिटी के फोटो लिए, और दूसरा पानी को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए और फिर उसके हाई क्वालिटी के फोटो लिए। नेगेटिव वाइब्रेशन में ये तो बेकार पानी है, गंदा पानी है, इससे तो प्यास भी नहीं बुझती है, ऐसे ऐसे बोल के फिर उसके फोटो लिए। और पॉजिटिव वाइब्रेशन में ये पानी बहुत ठंडा है, बहुत मीठा है, इससे सबकी प्यास बुझती है, ये सबको बहुत सुख देता है, ऐसे सोच के फिर उसके फोटो लिए। और उन दोनों फोटो में उसके मोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके फोटो लिए उसने, और उन फोटो में रात दिन का फर्क था। जहां नेगेटिव सोच के, नेगेटिव वाइब्रेशन देके फिर फोटो लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई शेप ही नहीं बन रहा था, सब कुछ बिखरा बिखरा था। और पॉजिटिव वाइब्रेशन देके फोटो लिए तो उस पर क्रिस्टल जैसे, बहुत अच्छे अच्छे हीरे जैसे जड़े हुए हों, इस प्रकार का शेप बना। आप गूगल करके देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, ऐसे करके आप गूगल करके देखेंगे तो आपको ये सारा डिटेल मिलेगा उसमें। तो हमारे हर संकल्प, हमारे हर विचार, वो हमें भी प्रभावित करते हैं और वातावरण को भी प्रभावित करते हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए ये शुभ भावना रखना बहुत जरूरी है। आपको एक मैं बड़ा प्रयोग बताता हूं जो हमने 2010 में किया था गुड विशेष का। 2010 में ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, 100 बिलियन मिनट्स ऑफ गुड विशेष बैंक, बिलियन मिनट ऑफ गुड विशेष बैंक, ऐसा एक बैंक खोला हमने गुड विशेष डिपॉजिट करने के लिए। और एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में गुड विशेष कैसे करना है वो डिटेल लिखा, और हरेक से रिक्वेस्ट किया, जो भी हमारे संपर्क में आते थे उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सारे विश्व के लिए गुड विशेष कीजिए। और गुड विशेष की कमेंट्री भी हमने उसमें लिखी कैसे करना है, और वो फॉर्म में कम से कम 5 मिनट, अधिकतर जो उनकी इच्छा हो। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी पीरियड में हमारे ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में, जिनकी हजारों ब्रांचेज हैं, तो उसके अकाउंटिंग का भी हमको थोड़ा सा ख्याल चल रहा था, क्योंकि उस समय तक हम मैन्युअल अकाउंटिंग कराते थे हर ब्रांच से, फिर उनके मैन्युअल वो हजारों अकाउंट्स की समरी मंथली हेड ऑफिस में आती थी, हेड ऑफिस में फिर हम उसको सॉफ्टवेयर में एंट्री करते थे और फिर उसका मर्जिंग, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ये सब करते थे। तो रात दिन बस उसी में लगे रहते थे, पढ़े लिखे मजदूर की तरह कार्य करते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हजारों ब्रांचेस के अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मैन्युअल अकाउंट्स को। फिर तो हमारे जो मुख्य ट्रस्टी थे रमेश भाई जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट 1956 के थे, तो वो बार बार हमको कहते थे कि भाई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि जो हमारी बहनें जो अकाउंट लिखती है वो भी समझ सके और ये सारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। हमने प्रयास भी किया था, अहमदाबाद की एक फर्म को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, उसको 6-7 लाख रुपए एडवांस भी दिए, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सका था उस समय। ये तो शुरुआत थी, फिर भी उन्होंने कह दिया कि ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। फिर भाई साहब ने फिर मुझे बोला कि ललित भाई आप कैसे भी करो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमको जल्दी से जल्दी बनाना ही है। तो अचानक मुझे क्लिक हुआ कि जो हमारा वो बिलियन मिनट गुड विशेष बैंक का प्रोजेक्ट था वो 15 अगस्त से शुरू हुआ था, नहीं 24 जनवरी से शुरू था और 15 अगस्त को पूरा हो रहा था। और ये 7 अगस्त की बात है कि मुझे एकदम से लाइट हुई, मैंने कहा कि सारी दुनिया में गुड विशेष बैंक का प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उसके लिए मैं ही निमित्त बना वो चलाने के लिए, तो क्यों नहीं हमारे इस सॉफ्टवेयर के लिए हम गुड विशेज रखें। और हमने कहा ठीक है, हमने अपने जो वहां ऑफिस में 15-20 मेरे साथी थे उन सबको मैंने बुलाया और कहा कि देखिए हम रोज इवनिंग में 7 to 7:30 मेडिटेशन करते हैं, तो हम 7:15 to 7:30 15 मिनट के लिए हम ये गुड विशेस करेंगे कि हमारा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया है जो हमारे सभी सेंटर्स पर हमारी बहनें जो भले कंप्यूटर पढ़ी हुई नहीं है, अकाउंट्स पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रही है और उस सॉफ्टवेयर के द्वारा सारा कार्य सरल हो गया है और सब खुश हो गए हैं, हमारा भी कार्य बहुत सरल हो गया है, बहुत इजीली बैलेंस शीट बन रही है। ऐसे ऐसे हम 15 मिनट के लिए गुड विशेस करेंगे, ये हम सोचे और इसके लिए सबने प्रयोग शुरू किया। अब ये तो मन की बात है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से सोचा होगा, लेकिन मैंने बहुत रिलीजियसली वो प्रयोग किया और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 14 अगस्त के दिन मैं अहमदाबाद गया था और रात को वापस रिटर्न हो रहा था, तो कार में मुझे हमारा जो मणिनगर सेंटर है वहां से फोन आया, विष्णु भाई जो वहां भाई है उन्होंने फोन किया कि ललित भाई आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले भाई की जरूरत है ना, आप कह रहे थे। मैंने कहा हाँ जरूरत है, तो कि अपने यहां क्लास में एक भाई आते हैं और वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप कहो तो मैं उनसे बात करूं। मैंने कहा हाँ जरूर बात कीजिए आप, या मुझे उसका नंबर दे दीजिए मैं बात कर लेता हूं। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कार से ही उनसे बातचीत किया, आधा घंटा हमारी बातचीत चली। मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट उनको बताई कि हमारी ये सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसने कहा कि ललित भाई बन जाएगा और हम बना देंगे, एक बार हम पर्सनली मीटिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर 3 दिन बाद वापस अहमदाबाद गया और उस भाई को सेंटर पर बुलाया, तो उनके साथ हमने मीटिंग की। जब उनके साथ मीटिंग किया, निखिल भाई उनका नाम था, तो उनके साथ मीटिंग किया और जब ये सारी चीजें बताई तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मैं बना दूंगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बना देंगे तो कितना समय लगेगा? तो कि लगभग 4-5 महीने में बन जाएगा। और मैंने कहा खर्च कितना आएगा, क्योंकि वो खुद तो जॉब करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो परमात्मा की सेवा का प्रोग्राम है, मैं इसमें कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं आपको पूरा फ्री में बना के दूंगा। मैंने कहा वंडर है। मैंने कहा लेकिन आप तो जॉब करते हैं और आप कब बनाएंगे कब? तो बोले मैं जॉब से घर पे आने के बाद भी बना लूंगा और मेरा संडे को छुट्टी रहता है तब भी मैं करके कर लूंगा, रात दिन करके मैं बना लूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करो। मैंने कहा भाई आप तो कह रहे हैं लेकिन घर पर भाभी जी हैं, वो कहेंगे कि ये संडे भी अभी सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए हैं तो वो हमको डांटेंगे फिर, तो हमको एक बार उनसे भी बात करनी पड़ेगी वो तैयार है कि नहीं आपको छुट्टी देने के लिए बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो अभी बात कर लो। तो हम उनके घर गए, तो हमने उनके युगल से बात किया, उनकी वाइफ से बात किया कि ऐसे ये सॉफ्टवेयर का बनाने का जवाबदारी है और निखिल भाई ले रहे हैं तो आप तैयार हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि जब 4 दिन पहले इन्होंने बात किया था तब ही हम इतनी खुश हो गई थी कि भगवान के घर की इतनी बड़ी सेवा मिल रही है तो हम जरूर करेंगे। और मैंने अपने मम्मी पापा को भी भाई को भी फोन करके बोल दिया कि 6 दिन के बाद जो राखी है तो राखी पे मैं इस बार घर नहीं आऊंगी, लेकिन हमको सेवा में अभी पूरा टाइम देना है। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो अच्छा है, इनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर हम आबू में बड़ी मीटिंग किया और भी 2-3 जो संस्था से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बुलाया और कहा कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमने उसका नाम डिसाइड किया कनेक्ट वन और वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू हुआ। लेकिन 4-5 महीना निकला तो कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई उसमें। मेरी गुड विशेस चालू थी मन ही मन में कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया है, सब यूज कर रहे हैं ये सब अच्छा। इसके पहले ये सॉफ्टवेयर देने से पहले हमने टेली वालों से भी संपर्क किया, टेली के वाइस प्रेसिडेंट तक आबू में आके गए और हमारे साथ मीटिंग करके गए, क्योंकि 1000 इंस्टॉलेशन करना था उस समय। तो हमने उनसे कोटेशन भी मांगा और उन्होंने 2 साल का करीब 2.5-3 करोड़ का कोटेशन दिया। 1000 इंस्टॉलेशन, हमारे हिसाब से रिपोर्ट्स बनाना, मॉडिफिकेशन करना और अपडेशंस करना, तो 2.5-3 करोड़ का कोटेशन था। तो वो हमारी बजट से बाहर था, तो हमने उनको मना किया था और उसके बाद ये गुड विशेस का प्रयोग किया और ये भाई मिले। तो जब 4-5 महीने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमने फिर उस भाई को कहा, निखिल भाई को, हमने कहा निखिल भाई ये तो कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रही है और आप जॉब करते हुए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा है कि अगर आप जॉब छोड़ के फुल टाइम के लिए ये करते हैं तो हम जो भी आपका जितना सैलरी है वो दे देंगे या जो भी है वो दे देंगे, लेकिन आप फुल टाइम दे तो अच्छा है। बोले मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने कहा हम उसके लिए भी गुड विशेष का प्रयोग करेंगे, आप भी गुड विशेष रखिए कि छुट्टी मिल रही है और आपके ऑफिस का काम भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन आप उनको अवेलेबल रहना, उनको मदद करना, लेकिन आबू में रह के ये आपका कारोबार करिए। बोले मैं ट्राई करता हूं। और उसी समय चंडीगढ़ के भी एक भाई, सौरभ भाई जिनका नाम है, उन्होंने भी थोड़ा इंटरेस्ट बताया था इस डेवलपमेंट में, तो हमने उनको फोन किया कि भाई ये आबू में आप फुल टाइम आके इसमें मदद कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ललित भाई जब से मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है मुझे इतना अंदर उमंग आ रहा है कि भगवान की संस्था का इतना बड़ा कार्य है तो इसे मैं जरूर पूरा करना चाहूंगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहां जॉब छोड़ के यहां का जो हमारा मकान है उसको बेच के मेरे माता पिता को लेके मैं आबू ही शिफ्ट हो जाता हूं, वहां एक फ्लैट खरीद लूंगा, माता पिता फ्लैट में रहेंगे और हम ये फुल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने में लगाएंगे। मैंने कहा वेलकम। दोनों भाई आए, दोनों ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और विद इन ईयर हमने फर्स्ट रिलीज दे दिया और आज 10 साल हो गए हैं। वो सॉफ्टवेयर बहुत ही हाई क्लास, जिनको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का ईआरपी सॉफ्टवेयर हमने इन हाउस बनाया बहुत छोटी टीम के साथ। आज बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के हमारे भाई बहने जब हमारे पास आते हैं और वो सॉफ्टवेयर देखते हैं तो वो कहते हैं असंभव कि इतनी छोटी टीम के साथ इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना के मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गुड विशेष से वो पॉसिबल हुआ। तो मैं दिन में कम से कम 101 बार गुड विशेष करता हूं किसी न किसी के लिए और वो मेरी आदत बन चुकी है। दूसरी प्रैक्टिस थैंक्स करना। मैं कम से कम दिन में 51 बार जो मैं किसी न किसी का थैंक्स करता हूं, आदत डालने के लिए। खास किसी ने पानी का ग्लास दिया, थैंक्स। किसी ने रोड पर रास्ता दिया, थैंक्स। किसी ने लिफ्ट का दरवाजा खोला, थैंक्स। किसी ने हमको कुछ भी फेवर किया, थैंक्स। आप अगर देखेंगे तो आपको दिन भर में फेवर करने वाले बहुत मिल जाएंगे जो आपको किसी न किसी रूप में फेवर कर रहे हैं, आपको भोजन बना के खिला रहे हैं, आपका हर प्रकार से ध्यान रख रहे हैं, आपको ड्राइव करके कहीं ले जा रहे हैं। आप हरेक को हर बार थैंक्स दीजिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक मन की अवस्था है, ग्रेटिट्यूड की भावना है और इससे जिंदगी बदल जाती है। एक बार विश्व के प्रथम पत्रकार नारद जी एक रेगिस्तान से होके जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा एक गरीब व्यक्ति फटे हाल में गर्मी में झुलस रहा था, कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, छाया की भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत परेशान दुखी था। नारद जी उसके पास गए और कहा कि भाई बहुत दुखी हो, मैं भगवान के पास मिलने जा रहा हूं, आपको कोई भगवान के लिए मैसेज हो तो आप दीजिए। तो उसने कहा कि आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप भगवान से ये पूछ सके कि मेरा ये दुख दर्द कब दूर होगा, कैसे दूर होगा। तो नारद जी भगवान के पास गए, जाके उनको वर्णन किया कि प्रभु हालत बहुत खराब है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है, आप उसका दुख दूर करने का, उसका ये दुख कब दूर होगा। तो भगवान ने कहा कि उसका दुख तो 7 जन्म तक दूर नहीं होगा, 7 जन्म तक वो दुखी रहेगा, उसके कर्म ऐसे हैं। तो अच्छा, तो कोई उपाय है प्रभु जो उसको बतावे और वो उसके कर्मों को ठीक कर सके? तो भगवान ने कहा कि उसको एक मंत्र देना, उसको कहना कि कुछ भी हो वो यही कहे कि भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। भगवान तेरा शुक्रिया, यही वो मंत्र देता रहे, गाता रहे, ये मंत्र उसको देना। नारद जी वापिस रिटर्न जर्नी में उससे मिले और उसको कहा कि भाई, उसको ये बात नहीं बताई कि 7 जन्मों तक वो दुखी रहेगा, नहीं तो वो उसी समय मर जाए, लेकिन उसको कहा कि तेरे दुख तो लंबे हैं, लेकिन तू अगर ये मंत्र सदा याद रखेगा कि भगवान तेरा शुक्रिया, कुछ भी हो जाए भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, कि ये तू मंत्र जपता रहेगा तो हो सकता है कि तेरे दुख कम हो जाए। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो यही बोलते रहेंगे, हमारा क्या जाता है, और अगर कभी वो रेत, गर्म रेत पर गिर जाता तो भी कहता भगवान तेरा शुक्रिया, कभी भूख प्यास से बिलकता तो भी कहता भगवान तेरा शुक्रिया, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, बस यही मंत्र वो जपता रहता था, वो यही मंत्र उसके मन में सदा चलता रहता था, सदा थैंक्स 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 ही निकलता था। जब 7 दिन बाद नारद जी को उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जब वो वापिस आए तो देखा कि उसकी हालत में सुधार था, उसको एक पेड़ की छाया भी मिल गई थी, पास में एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो छाया में बड़ा खुश होकर बैठा था और भगवान का शुक्रिया गा रहा था, चेहरे पर सारी उदासी चली गई थी। तो वो वापिस भगवान के पास गए नारद जी, कहा प्रभु आपने तो 7 जन्म के लिए बोला था और वो तो 7 दिन में ही चंगा हो गया है, ठीक है सब, कैसे क्या हुआ ये चमत्कार? तो कहा कि उसने जो शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड की जो भावना रखी ना, उससे उसके कर्मों का हिसाब किताब जल्दी पूरा हो गया और उसका दुख दूर हो गया। तो आप भी देखेंगे, आप दिन में कम से कम 51 बार थैंक्स, चाहे बोलकर चाहे मन में भी, चाहे लिख कर भी, ईमेल में, व्हाट्सएप में, करते तो है ये ना, तो थैंक्स जरूर करें, ये ग्रेटिट्यूड की भावना, और दिल से करें तो जरूर जो है उसका भी मन जो है पॉजिटिव बनेगा। और तीसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूं, दिन में कम से कम 21 बार किसी की महिमा, एप्रिसिएशन। कहते हैं महिमा तो भगवान को भी प्रिय होती है, भगवान भी पसंद करते हैं महिमा, तो मनुष्य की महिमा करेंगे तो उसको तो प्रिय ही होगी, लेकिन महिमा करना सहज नहीं है, किसी को एप्रिशिएट करना इजी नहीं है, एप्रिशिएशन में बहुत मेहनत लगती है, हिम्मत चाहिए, गलती निकालना, और विशेष हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो ऑडिट में यही काम होता है, गलतियां निकालना, तो नजरिया भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए कहते हैं नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएगा, सोच को बदलो तो सूरत बदल जाएगी, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपना नजरिया बदलते हैं, परसेप्शन बदलते हैं, तो फिर हम किसी की महिमा कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति में एक दो तो अच्छाई, विशेषता, स्पेशलिटीज है ही है, भले हम में उसके 10 अवगुण दिखाई देते हो, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलिटी तो है ही है, तो क्यों नहीं हम उसकी स्पेशलिटीज को थोड़ा बतावे, उसको उसकी महिमा करें। आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, आप कितना पंक्चुअल हो, टाइम पर आ जाते हो, आप भोजन कितना अच्छा बनाते हो, घर पर रोज आपको 3 टाइम भोजन मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि रोज आप कुछ महिमा करते ही होंगे, कभी नमक ज्यादा हो गया तो थोड़ा ऊंची आवाज हो जाएगी, लेकिन डेली महिमा भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये महिमा ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए, ये महिमा दिल से होनी चाहिए, और दिल से की हुई महिमा ही सामने वाले तक पहुंचती है और हमारे भी मन को पॉजिटिव बनाती है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, जब कोई आपको आधा ग्लास पानी ऑफर करता है तो 2 नजरिया हो सकता है, एक सोचता है कि देखो आधा खाली है, और दूसरा सोचता है कि देखो आधा भरा हुआ है, ये हमारा नजरिया है कि हम उसे कैसे देखते हैं, और जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, ये हमको याद रखें। एक लड़का पढ़ने में थोड़ा डल था, पिताजी बार बार उसको डांटते रहते थे, ताने देते रहते थे, टोंटिंग करते थे पिताजी, उसको पढ़ने के लिए कहते रहते थे। एक बार जब वो खेलकर घर में आया तो पिताजी फिर डांटने लगे और डांटते डांटते उसको बोला कि तेरी उम्र में तो जवाहरलाल नेहरू जी लंदन में जाके पढ़ते थे। अब जब पिताजी इतना डांट रहे थे तो बच्चे से भी रहा नहीं गया, धीरे से कहा पिताजी आपकी उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये जैसा देते हैं ना वैसा वापिस सामने से मिल जाता है। तो हम गुड विशेष दें, हम थैंक्स दें, हम अप्रिशिएशन दें, उनकी महिमा करें। और ये अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन वो नेगेटिविटी से दूर होते हुए पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बनता रहेगा। लेकिन समय ऐसा है जब चारों तरफ नेगेटिविटी है, तब हमें और भी शक्ति की जरूरत पड़ती है। केवल अपनी शक्ति से ही हम पॉजिटिव नहीं बना सकेंगे। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो आपको बीपी हाई है ना, आप चिंता नहीं करो। लेकिन चिंता कैसे नहीं करें वो उनको नहीं पता है। तो हमें भी शक्ति लेने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उन सोर्स ऑफ एनर्जी पर कनेक्शन करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि जैसे आत्मा, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो फिर वो चार्ज हो जाती है। ऐसे ही इन नेगेटिविटी के कारण हम जो आत्मा चेतना है उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और उसको चार्ज करने के लिए परमात्मा पिता से जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके साथ हमें कनेक्ट होना होगा, और उसके लिए राजयोग है। उस राजयोग के द्वारा हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और राजयोग सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी केंद्र पर जाकर इस राजयोग का प्रयोग सीख सकते हैं। और अभी जब लॉकडाउन की स्थिति है तो आप ऑनलाइन भी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग 7 डेज कोर्स, ऐसा आप अगर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में बहुत से हमारे जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनके 7 डेज कोर्स मिल जाएंगे। आप वो 7 डेज कोर्स करके राजयोग सीखेंगे, उसके बाद आप सहज रीति से उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के पॉजिटिविटी में रख पाएंगे। और पॉजिटिविटी का रिजल्ट है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हम सदा खुश रह पाएंगे। कठिन नहीं है, प्रयास की जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे सभी फ्रेंड्स ये प्रयास जरूर करेंगे और सदा ही खुश रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मंजिलें दूर नहीं, थोड़ा चल के तो देखिए, रोशनी जरूर मिलेगी, थोड़ा जलकर तो देखिए, अजी गंगा तो आपके भीतर ही बहेगी, बस हिमालय की तरह थोड़ा पिघल कर तो देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरी शुभ भावना है कि आपका जीवन भी सदा खुशनुमा रहे। अच्छा, ओम शांति, फिर मिलेंगे।